हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 16 श्लोक नंबर 24 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य भद्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिहवीपि बस्व मृतुमेत देव गोविंद दामो धरमाधवीति। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिहवीपि बस्व मृतुमेत देव गोविंद दामो धरमाधवीति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि मद्भागवत महापुराण की जय। तीसरे स्कंद अध्याय 16 जिसका शीर्षक है वैकुंठ के दो द्वार पालों जय और विजय को मुनियों द्वारा श्राप, श्लोक नंबर 24। अभी चतुष कुमार भगवान के दर्शन करके संतुष्ट हो गए हैं और भगवान से उनकी प्रार्थना करते हुए स्तुति कर रहे हैं। वे कहते हैं तत्तेन भीष्टमिव सत्वनिधे विधेत्सो क्षेमं जनाय निज शक्ति विरुत्रितारे नेता नैतावता त्रित्र धिपतिर्भत विश्वभर्तु तेजक्षतं त्वनतस्तस्य स ते विनोद। तत्तेन भीष्टमिव सत्वनिधे विधत्से ಹಸ್ತೇನ ಭೀಷ್ಟಮಿವ ತತ್ವ ನಿಧಿರ್ವಿಧಿತ್ಸೋ ಕ್ಷೇಮಂ ಜನಾಯ ನಿಜ ಶಕ್ತಿಭಿರ್ ಧೃತಾರೆ ನೈತಾವತ ತ್ರಧಿಪತಿರ್ ಬತ ವಿಶ್ವಭರ್ತುಸ್ ತೇಜಕ್ಷತಂ ತ್ವನ ತಸ್ಯ ಸತಿ ವಿನೋದ ತತ್ತಿ ಅನಭೀಷ್ಟಂ ಇವ ತತ್ಮನ ಶುಭ ಸೂಚಕ ಮಾರ್ಗ ಕಾ ವಹ ನಿಶಾನ್ ತೇ ಯನಿ ತುಮಾರೆ ದ್ವಾರಾ ಅನಭೀಷ್ಟಂ ಯನಿ ಪಸಂದ್ ನಹೀ ಕಿಯಾ ಹುವಾ ಇವ ಸದೃಶ್ಯ ಸತ್ವನಿಧೆ ಸಾರಿ ಅಚ್ಛಾಯಿ ಕಾ ಆಘಾರ ವಿದಿತ್ ಸೋ ಅರ್ಥಾತ್ ಕರ್ನೆ ಕೆಲಿಯೆ ಇಚ್ಛುತ್ ಕ್ಷೇಮಂ ಜನಾಯ ನಿಜ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇಮಂ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಜನಾಯ ಯನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನೋ ಕೆಲಿಯೆ ನಿಜ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ನಿ ಹಿ ಶಕ್ತಿಯ ದ್ವಾರ ಉದ್ಧೃತ ಅರ್ಥಾತ್ ವಿನಷ್ಟ ಕಿಯಾ ಹುವ ನೈತಾವನವತ ಅರ್ಥಾತ್ ನ ಕ ಮತ್ಲಬ್ ಹೋತಾ ಹೈ ನಹಿ ಏತಾವತ ಮನ ಇಸ್ಸೆ ತ್ರಧಿಪತೆ ತೀನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಸೃಷ್ಟಿಯೋ ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೈತಾವತ ತ್ರಧಿಪತೆ ಬತ ವಿಶ್ವಭರ್ತ ಬತ ಮನ ಹೇ ಪ್ರಭು ವಿಶ್ವಭರ್ತ ಯಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೆ ಪಾಲಕ್ ತೇಜ ಕ್ಷತಂ ತೇಜ ಅರ್ಥಾತ್ ಕ್ಷತಿ ಕ್ಷತಂ ಅರ್ಥಾತ್ ನ್ಯೂನ ತು ಯಾನಿ ಲೇಕಿನ್ ಅವನತಸ್ಯ ಅರ್ಥಾತ್ ವಿನೀತ್ ಸ ತೇ ವಿನೋದ ಸ ಮನ ವಹ ತೇ ಮನ ಆಪ್ಕ ವಿನೋದ ಮನ ಆನಂದ ಚತುರ್ಷ್ ಕುಮಾರ್ ಭಗವಾನ್ ಸೆ ಕಹತೆ ಹೇ हे प्रभु आप नहीं चाहते कि शुभ मार्ग को विनष्ट किया जाए क्योंकि आप समस्त शिष्टाचार के आकार हैं आप सामान्य लोगों के लाभ हेतु अपनी बलवती शक्ति से दृष्ट तत्व को विनष्ट करते हैं आप तीनों सृष्टियों के स्वामी तथा पूरे ब्रह्मांडों के पालक हैं अतएव आपके विनीत व्यवहार से आपकी शक्ति घटती नहीं प्रत्युत इस विनम्रता द्वारा आप अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ग्वाल बाल बनने से या सुदामा ब्राह्मण को अथवा नंद महाराज वसुदेव महाराज युधिष्ठिर तथा पांडवों की माता कुंती जैसे भक्तों को सम्मान देने से भगवान कृष्ण के पद में कोई कमी नहीं आई प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण थे फिर भी उनका व्यवहार आदर्शमय था यहाँ पर चतुष कुमार भगवान से कहते हैं कि आपका जो ये विनम्र स्वरूप है क्योंकि वो आकर भगवान उनसे क्षमा मांग रहे थे ना तो वे कहते हैं कि अतएव आपके विनीत व्यवहार से आपकी शक्ति घटती थोड़े है और भी आपकी महिमा जो है वो बढ़ती है श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान नंद महाराज की जुत्ती को सर पे लेके आते हैं कभी वसुदेव जी की सेवा करते हैं युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धुलाते हैं अथवा उनके जूठे पत्तल उठा के लेके जाते हैं या फिर अर्जुन के रथ का सारथी बनने के लिए वो तैयार हो जाते इन सब कार्यों से भगवान श्री कृष्ण के पद में तो कोई कमी नहीं आती प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम थे फिर भी उनका व्यवहार आदर्शमय था भगवान सच्चिद आनंद विग्रह हैं उनका स्वरूप पूर्णतया आदि आध्यात्मिक आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण एवं नित्य है क्योंकि सारे जीव उनके अंश हैं अतः मूलतः वे भी भगवान के नित्य रूप से के उसी गुण से संबंधित हैं जिनसे स्वयं भगवान किंतु जब वे अपनी विस्मृति के कारण भौतिक शक्ति माया के संपर्क में आ जाते हैं तो उनका अस्तित्व संबंधी स्वभाव प्रच्छन्न हो जाता है श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जिस तरह से भगवान पूर्ण है, आनंदमय है, सच्चित आनंद है। इसी तरह हम सब भगवान के अंश हैं, तो हम भी सत हैं, चित हैं, आनंद हैं। लेकिन जब ये जीव भगवान का अंश होते हुए भी जब मतलब अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल जाता है विस्मृति के कारण और भौतिक शक्ति माया के संसर्ग में आ जाता है, तो ये गुण, ये जो त्रिविण गुणमयी जो माया है उस पर अटैक करती है, तो उस उनका अस्तित्व संबंधी स्वभाव प्रच्छन्न हो जाता है। उसका रियल जो स्वभाव है सच्चित आनंद वाला, वो छिप जाता है। हमें भगवान कृष्ण के आविर्भाव को इसी भाव से देखना चाहिए जिस भाव से कुमार उनसे प्रार्थना करते हैं। वे शाश्वत रूप से वृंदावन के ग्वाल बाल हैं, वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के नित्य नायक हैं, वे द्वारिका के नित्य ऐश्वर्यवान राजकुमार हैं और वृंदावन की गोपिकाओं के नित्य प्रेमी हैं। उनके सारे प्राकट्य सार्थक हैं क्योंकि वे उन बद्ध जीवों को उनके असली गुण प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। वे सारे कार्य उन्हीं के हितार्थ करते हैं। कृष्ण की इच्छाओं से तथा अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र युद्ध में जो बल का प्रदर्शन हुआ वह भी आवश्यक था, क्योंकि जब लोग अधिक अधार्मिक बन जाते हैं तो बल आवश्यक होता है। इस संदर्भ में अहिंसा धूर्तता है। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि भगवान कोई भी कार्य करते हैं वो नित्य होता है। जैसे भगवान नित्य वृंदावन के ग्वाल बाल हैं, गोपियों के प्रेमी हैं, नित्य नायक हैं, द्वारिका के नित्य राजकुमार हैं। भगवान जो भी कार्य करते हैं वो पूर्ण होता है। इसलिए भगवान ने जो युद्ध में जो ये इतने सारे लोगों के प्राणों की हानि हुई वो भी आवश्यक थी, तो क्योंकि भगवान बताना चाह रहे कि केवल बोलने से सब लोग नहीं समझते हैं, कभी कभी युद्ध भी अनिवार्य हो जाता है। जब अधर्म जो है वो बढ़ने लगता है तो धर्म जिनके हाथ में है उनको अवश्य शस्त्र उठाना पड़ता है। अगर उस समय यहाँ पर पता है श्रीला प्रभुपाद जी कि क्योंकि जब लोग अधिक अधार्मिक बन जाते हैं तो बल आवश्यक होता है, उस संदर्भ में अहिंसा धूर्तता है। उस समय ये नहीं कहा जा सकता जैसे अर्जुन कह रहा था कि भाई इनके साथ युद्ध करने से बेहतर, इनको मारने से बेहतर है कि मैं जाकर भीख मांगूं। वो धूर्तता है। अधर्म का नाश करना आवश्यक है किसी भी तरह से। भगवान ने हर मुमकिन कोशिश की थी उनको समझाने की, लेकिन भगवान हमें दिखाना चाह रहे हैं ये जितने भी नायक होते हैं ना इतिहास में जो भगवान के, वो लीला कर रहे होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए शिक्षा होती है कि हमारा कार्य है, अगर कोई क्षत्रिय है तो उसका कार्य है कि धर्म का नाश करे। तो भगवान जो भी करते हैं उसी में जीव का कल्याण होता है। इसीलिए चतुर्ष कुमार भगवान से आगे निवेदन करते हैं कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि हमने आपके इन द्वारपालों को जो बिल्कुल निर्दोष थे, आपकी सेवा में थे, उनको हमने श्राप दे दिया। इसके बदले में आप हमें जो दंड देना चाहते हैं, जो उचित समझते हैं, हमें वो दंड दीजिए, क्योंकि हमने भी इन निर्दोष लोगों को श्राप दिया है तो हमें भी दंड मिलना चाहिए। तो आप हमारे साथ जो भी करोगे हमें स्वीकार है, हम उसमें कोई भी विरोध नहीं करेंगे। चतुर्ष कुमार भगवान से कहते हैं, यम वानयोर्तममदीश भवान विधत् ते वृत्तिम नुवा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वाय उचितो द्रियतां सदण्डो येनागसो वयमयुङ्महि किल्बिषेण। यम वानयोर, यमन वो वामन अथवा अनयो मतलब उन दोनों को, यम यानी जो भी उन दोनों को, दमम यानी दंड, अधीशम हे प्रभु, हे प्रभु इन दोनों को हमने दंड दिया। भगवान सॉरी भवान यानी आप विद्धते प्रदान करता है वृत्तम अच्छा जीवन नु निश्चय ही वह अथवा तत् यानी वह अनुमन मही अर्थात हम स्वीकार करेंगे। हमने उनको श्राप दिया, उसकी बदले में आप हमें जो भी दंड देंगे हम स्वीकार करेंगे। नो मन निश्चय ही वामन अथवा सॉरी निर्व्यलीकम यानी द्वैत रहित, हम उसमें कोई भी अवरोध नहीं करेंगे, कोई भी द्वैत नहीं करेंगे, आप जो भी दंड देंगे हम उसको स्वीकार करेंगे। अस्मासु वाय उचितो, अस्मासु यानी हमको, वामन अथवा यमन जो भी उचितमन उचित हो, जो भी उचित हो, द्रियताम स दंडो, द्रियता मन प्रदान किया जाए, स मन वह दंडो यानी दंड, ये नागसो ये मन जो, अनागसो मन पाप रहित, वयम यानी हम, अयंक्ष्महि यानी नियत किया है, किल विषेण शाप, वो पाप रहित हैं दोष रहित हैं उनको हमने शाप दिया है, तो आप क्योंकि सबका कल्याण करने वाले हैं तो जो भी दंड हमें देंगे तो हमें वो स्वीकार है, हम कोई भी उसमें द्वेष नहीं करेंगे। अनुवाद, हे प्रभु आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को या हमें भी जो दंड देना चाहें उसे हम बिना द्वेष के स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि हमने दो निर्दोष व्यक्तियों को शाप दिया है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब चारों कुमार मुनिगण जय तथा विजय नामक दो द्वारपालों को दिए गए शाप को निरस्त करते हैं क्योंकि अब उन्हें यह चेत हुआ है कि भगवान की सेवा में लगा रहने वाला व्यक्ति किसी भी अवस्था में दोषी नहीं हो सकता। यह कहा गया है कि जिसे भी भगवान की सेवा में अंतर निहित श्रद्धा हो या जो वास्तव में दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हुआ हो उसमें देवताओं के सारे गुण सद्गुण होते हैं, अतिव भक्त कभी भी दोषी नहीं हो सकता। यदि कभी यह पाया जाए कि उसने संयोगवश या किसी क्षणिक व्यवस्था के कारण कोई त्रुटि की है तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं जिनका मोटिव सिर्फ यही होता है कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कुछ भी करते हैं ना, तो क्योंकि उसमें इंद्रिय तृप्ति कोई इच्छा नहीं है। पाप कब होता है, दोष कब होता है, जब कार्य इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए, लेकिन जब कार्य कृष्ण भक्ति के लिए किया जाता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, तो वो कार्य में दोष नहीं हो सकता, वो व्यक्ति दोषी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि अतएव भक्त कभी भी दोषी नहीं हो सकता। यदि कभी यह पाया जाए कि उसने संयोगवश या किसी क्षणिक व्यवस्था के कारण कोई त्रुटि की है तो उसे गंभीरता से नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ पर जय तथा विजय के शापित होने पर पछतावा व्यक्त किया जा रहा है। अब कुमारगण अपनी स्थिति को रजो तथा तमोगुण के रूप में सोच रहे हैं और वे भगवान द्वारा दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। सामान्यतः भक्तों के साथ बर्ताव करते समय हमें दोष ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी याद करा रहे हैं कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि जो भक्त होते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, उनमें कभी भी दोष नहीं देखना चाहिए। वो कुछ भी कर रहे हैं भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, तो कभी भी दूसरों में जो दोष नहीं ढूंढना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी पुष्टि है कि जो भक्त निष्ठापूर्वक परमेश्वर की सेवा करता है वह यदि बारी भूल भी करता है पाया जाए तो भी उसे साधु ही माना जाना चाहिए। अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, यदि कोई अपराधियों में सबसे बड़ा अपराधी है लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त है तो साधु रेव स मंतव्य, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। वह अपनी पहले की आदतों के कारण कोई त्रुटि कर सकता है, किंतु उसे भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण उस त्रुटि को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर उससे अपने उसके आदतों के कारण कोई गलती भी हो जाए, तो उसे भगवान की सेवा में लगते रहने के कारण उस त्रुटि को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, सीरियस नहीं लेना चाहिए, उसकी गलतियों को नहीं देखना चाहिए। भक्त के साथ व्यवहार करते हुए हमें हमेशा उसकी अच्छाइयों की ओर देखना चाहिए और अपनी बुराइयों की ओर देखना चाहिए, तभी हम भक्ति में उन्नति कर सकते हैं। अब ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, आगे भगवान उत्तर देते हैं। अब भगवान को उन्होंने बोला कि आप हमें जो भी है ना दंड देंगे वो स्वीकार है, तो भगवान कहते हैं आप चिंता मत करो, मेरे भक्त जो भी कार्य करते हैं उसमें मेरी इच्छा होती है, तो आपने जो उनको दंड दिया ना वो भी मेरी इच्छा है, तो आप फिक्र मत कीजिए, वो इसी दंड को पाने के योग्य थे क्योंकि ये दंड मेरे द्वारा निश्चित किया गया, लेकिन मैं इनको पुनः लेके आऊँगा जल्दी अपने पास, क्योंकि ये सदैव मुझसे ही जुड़े रहेंगे, भले क्रोधवश लेकिन सदैव मेरा स्मरण करेंगे, तो मैं स्वयं जाऊँगा उनको पुनः अपने धाम में लाने के लिए। श्री भगवान उवाच, एताव सुरेतर गतिम प्रतिपद्य सद्य संरंभ संवृत समाध्यनुबद्ध योगौ भूय सकाशम उपयास्यत आशुयो शापोमयेव निमितस्तदवेत विप्रा एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सद्य संरंभ संवृत समाध्यनुबद्ध योगौ भूय सकाशम उपयास्यत आशुयो शापोमयेव निमितस्तदवेत विप्रा। श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री भगवान ने कहा, एतौ सुरेतर गीतम, एतौ मना ये दोनों द्वारपाल, सुर इतर आसुरी गतिम अर्थात गर्भ प्रतिपद्य पाकर सद्य शीघ्र ही संरंभ यानी क्रोध से संवृत यानी संवृद्धित होकर समाधि मन की एकाग्रता अनुबद्ध यानी दृढ़ता पूर्वक, तो ये दोनों जो हैं वो असुर योनि में जाएंगे और बहुत ही क्रोध के साथ सदैव समाधि में होंगे, यानी समाधि का मतलब क्या है, मन भगवान में एकाग्र हो। तो वे कहते हैं अनुबद्ध यानी दृढ़तापूर्वक योगो यानी मुझसे बंधेंगे, भूय सकाश सकाशम उपयास्त यत भूय मना पुत्र सकाशम यानी मेरे पास उपयास्यत यानी लौटेंगे आशु यानी बहुत ही शीघ्र, बहुत शीघ्र वो मेरे पास वापस लौटेंगे, यो वह यो मना जो वह मना तुम्हारा शापो मयेव निमित शाप जो आपके द्वारा शाप दिया गया मयेव मैं मना मेरे द्वारा एव मना निश्चित रूप से निमितस तद वेत विप्रा निमितस यानी नियत किया गया तत् वह अवेत जानो विप्रा हे ब्राह्मणों। अनुवाद, भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों यह जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया है वह मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया गया था, अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे, किंतु वे क्रोध द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता द्वारा मेरे विचार में मुझसे दृढ़तापूर्वक संयुक्त होंगे और शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने कहा मुनियों द्वारा जय तथा विजय द्वारपालों को जो दंड दिया गया था उसकी योजना स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई थी, भगवान की स्वीकृति के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। यह समझ लेना होगा कि वैकुंठ में भगवान के भक्तों को शाप देने के पीछे एक योजना थी और उनकी इस योजना की व्याख्या कई उद्भट आदि अधिकारियों ने की है। कभी कभी भगवान युद्ध करना चाहते हैं, भगवान में भी युद्ध करने का उत्साह पाया जाता है, अन्यथा युद्ध क्यों कर प्रकट होता। चूंकि भगवान हर वस्तु के स्रोत हैं, अतः क्रोध तथा युद्ध प्रवृत्ति में भी उनमें निहित रहती है। जब वे किसी के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें शत्रु खोजना पड़ता है, किंतु वैकुंठ लोक में एक भी शत्रु नहीं है, क्योंकि सारे लोग भगवान की सेवा में पूर्णतया लगे रहते हैं। इसलिए कभी कभी वे अपना युद्ध में उत्साह प्रकट करने के हेतु इस भौतिक जगत में अवतार रूप में प्रकट होते हैं। इतना सुंदर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान हर एक आनंद के आगार हैं, स्रोत हैं। तो भगवान युद्ध में भी अपना आनंद लेने के लिए किसी से युद्ध करने की इच्छा प्रकट करते हैं। इसीलिए अब भौतिक जगत में तो कोई उनके वेग को स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए अपने ही किसी पार्षदों को यहाँ पर शत्रु बनाकर भेज दिया जाता है और फिर उनके साथ भगवान युद्ध करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 4.8 में कहा गया है कि भगवान भक्तों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए अथवा अभक्तों का नाश करने के लिए ही प्रकट होते हैं। अभक्तगण भौतिक जगत में पाए जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में नहीं। अतः जब भगवान युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें इस जगत में आना पड़ता है, किंतु परम प्रभु से युद्ध कौन करेगा? कोई भी उनसे युद्ध करने में सक्षम नहीं है। इसलिए क्योंकि इस जगत में भगवान की लीलाएं अपने संगियों के ही साथ संपन्न की जाती हैं, अन्यों के साथ नहीं। अतः इन्हें ऐसा भक्त ढूंढना पड़ता है जो शत्रु का अभिनय कर सके। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम तथा मैं दोनों ही इस जगत में कई बार जन्म ले चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। तो भगवान अपने ही आध्यात्मिक जगत से किसी को शत्रु का अभिनय करने के लिए, शत्रु का कैरेक्टर करने के लिए इस भौतिक जगत में भेजते हैं। और भगवान ने ये भी बताया, बहुनी में जन्मानी तवच्छा अर्जुन, हे अर्जुन, मेरे और आपके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, किंतु तुम इसे भूल गए हो जबकि मुझे स्मरण है। इस तरह भगवान ने जय तथा विजय से भौतिक जगत में युद्ध करने के लिए उन्हें चुना और यही कारण था कि मुनिगण उन्हें देखने के लिए आए थे और संयोगवश द्वारपालों को श्राप दे दिया गया। भगवान चाहते थे कि वे दोनों भौतिक जगत में भेजे जाएं, सदा के लिए नहीं बल्कि थोड़े समय के लिए। अतएव जिस तरह कोई व्यक्ति रंगमंच पर मंच के स्वामी के साथ शत्रु का अभिनय करता है, यद्यपि ये नाटक थोड़े समय के लिए होता है और सेवक तथा स्वामी के मध्यम स्थायी शत्रुता नहीं रहती, उसी तरह सुरजनों यानी भक्तजनों को असुरजन या नास्तिक परिवार में जाने के लिए मुनियों द्वारा शाप दिया गया। कोई भक्त नास्तिक परिवार में जाए यह आश्चर्यजनक है, किंतु है केवल दिखावा। छद्म युद्ध समाप्त करने के बाद भक्त तथा भगवान दोनों पुनः आध्यात्मिक लोकों में मिल जाते हैं। यहाँ पर इसकी पुष्टि स्पष्ट व्याख्या की गई है। निष्कर्ष यह है कि कोई वैकुंठ लोक से कभी पतित नहीं होता, क्योंकि यह नित्य धाम है, किंतु भगवान की इच्छा अनुसार भक्तगण इस जगत में उपदेशकों या नास्तिकों के रूप में आते हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक घटना के पीछे भगवान की योजना रहती है। उदाहरणार्थ, भगवान बुद्ध अवतार थे, फिर भी उन्होंने नास्तिकता का उपदेश दिया, ईश्वर नहीं है, किंतु वास्तव में इसके पीछे एक योजना थी जिसकी के भागवत में व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान जो भी करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और जब भगवान अपने आध्यात्मिक जगत के जीवों को पतित करके इस भौतिक जगत में लाते हैं, तो उसका एक ही कर्तव्य होता है कि आप आइए और मेरी तरह मेरे साथ इस लीला में भाग लीजिए। और फिर बहुत ही शीघ्र भगवान उन्हें पुनः अपने धाम वापस लेके जाते हैं। अब ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, ब्रह्मोवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानंद भाजनम वैकुंठम तदित्तदधिष्ठानम विकुंठम च स्वयं प्रभम। अथ ते मुनयो दृष्ट्वा, ब्रह्मोवाच यानी ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, अथ मना अब, ते मना वे, मुनयो यानी मुनिगण, दृष्ट्वा यानी देखकर, नयनानंद भाजनम, नयन मना आँखों का, आनंद मतलब आनंद, भाजनम मना उत्पन्न करते हुए, अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन करने के उपरांत ही नयन जो है वो आनंदित होते हैं। तो उन द्वारपालों ने नयनानंद भाजनम अत्यंत ही सुंदर भगवान के स्वरूप को ध्यान से देखा। वैकुंठ तद अधिष्ठानम, वैकुंठम अर्थात वैकुंठ लोक, तद मना उसका अधिष्ठानम यानी धाम, विकुंठम यानी भगवान च तथा स्वयं प्रभम आत्मज्योतित। अनुवाद, ब्रह्मा जी ने कहा, वैकुंठ के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आत्म ज्योतित वैकुंठ लोक में देखने के बाद मुनियों ने वह दिव्य धाम छोड़ दिया। शिला प्रभुपाद की, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है और इस श्लोक में पुष्टि की गई है कि भगवान का दिव्य धाम स्वयं प्रकाशमान है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि आध्यात्मिक जगत में न चत भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक, सूर्य चंद्रमा या बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह कथन सूचित करता है कि सारे लोक स्वतः प्रकाशित आत्म निर्भर तथा स्वतंत्र हैं। वहाँ पर प्रत्येक वस्तु पूर्ण होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार वैकुंठ चला जाता है वह कभी भी नहीं लौटता। वैकुंठ लोक के निवासी भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आते, किंतु जय तथा विजय की घटना भिन्न प्रकार की थी। वे कुछ काल के लिए भौतिक जगत में आए और तब वैकुंठ लोक में लौट गए। तो श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान का वादा है कि यद गत्वा नानिवर्तन्ते तद् धाम परम मम, जो एक बार मेरे धाम में आ जाते हैं वो वापस नहीं आते। लेकिन भगवान अपने जो बहुत ही बहुत मुख्य पार्षद होते हैं उनको भगवान पतित नहीं करते, बस लीला करते हैं, भौतिक जगत में लेके आते हैं फिर वापस अपने साथ लेके जाते हैं। तो ये कोई पतित होना नहीं है, बल्कि ये भगवान की लीला है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवंतम परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मु प्रमुद्दिता शंसन्तो वैष्णवीं श्रयं। भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मु प्रमुद्दिता शंसन्तो वैष्णवीं श्रयं। भगवन्तं अर्थात भगवान को परिक्रम्य अर्थात प्रदक्षिणा करके, प्रणिपत्य नमस्कार करके, अनुमान्य यानी जानकर च प्रतिजग्मु यानी वापस आए, और प्रमुद्दिता अर्थात अतीव हर्षित शंसन्तः प्रशंसा करते हुए, वैष्णवीं श्रयम वैष्णवों को, श्रेयम यानी ऐश्वर्य की। अनुवाद, मुनियों ने भगवान की प्रदक्षिणा की, उन्हें नमस्कार किया, दिव्य वैष्णव ऐश्वर्यों को जान लेने पर वे अत्यधिक हर्षित होकर लौट आए। अब भगवान ने उन्हें बोला कि भाई ये तो मेरी लीला है, आपके द्वारा हो गई है। तो भगवान को प्रणाम करके, परिक्रमा करके, वो चतुष कुमार वहाँ से लौट आए। श्री प्रभुपाद की, श्री प्रभुपाद जी कहते अभी भी हिंदू मंदिरों में भगवान की प्रदक्षिणा करने की सम्मानीय प्रथा है। विशेष रूप से वैष्णव मंदिरों में अर्चा विग्रह को नमस्कार करने तथा मंदिर की कम से कम 3 परिक्रमा करने की व्यवस्था रहती है। तो इससे क्या होता है, कुछ कुछ लोग पूछते हैं भाई परिक्रमा क्यों करते हैं, तो क्योंकि हम ना जाने कितने करोड़ जन्मों से भगवान से दूर हैं। और ऐसा बताया जाता है यदि हम भगवान के मंदिर के चक्कर काटते हैं तो जन्म मरण के चक्कर कम होते हैं। इसे कम से कम 3 चक्कर ज़रूर काटने चाहिए भगवान के मंदिर के। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बताया कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी करने की व्यवस्था होनी चाहिए। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी के, भगवान जय और विजय से कहते हैं कि तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया था और उन्होंने आपको श्राप दिया है, तो तुम्हें जाना तो पड़ेगा, लेकिन भयभीत मत हो, तुम मेरे दास हो, मैं जल्दी तुमको वापस लेके आऊँगा। मैं तो उनके श्राप को भी निरस्त करना चाहता था, कर सकता था, मेरे अंदर शक्ति थी, लेकिन क्योंकि हम एक लीला करने वाले हैं तो उसमें आपको भाग लेना है, तो आप है ना इससे भयभीत नहीं होना। श्लोक ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान अनु गावाह यातम माँ भैष्टम अस्तु शमा ब्रह्म तेज समर्थोपि अंतुम ने चेमतम तुम्हें भगवान अनुगावाह यातम मा वैष्टमस्तुषम ब्रह्म तेज समर्थोपि अंतुम ने चेमतम तुम्हें भगवान यानी भगवान ने अनुगव अर्थात अपने दोनों सेवकों अनुचरों से आह कहा यातम माम बेष्टमस्तु क्षमा। यातम यानी इस स्थान से चले जाओ, माँ मत बेष्टम डरो, आप इस स्थान से चले जाओ, माँ बेष्टम भयभीत मत हो, अस्तु हो, क्षम यानी सुख, ब्रह्म तेज समर्थ, ब्रह्म यानी ब्राह्मण का तेज मना शाप, समर्थ यानी समर्थ होने से, अपि भी हंतु यानी निरस्त करने के लिए, मैं तो उन ब्राह्मणों के इस श्राप को समाप्त भी कर सकता था, न इच्छे लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, मतम यानी अनुमोदित तू में तू मना प्रत्युत में मना मेरे द्वारा। भगवान ने कहा, तब भगवान ने अपने सेवकों जय तथा विजय से कहा, क्षमा, तब भगवान ने अपने सेवकों जय तथा विजय से कहा इस स्थान से चले जाओ, किंतु डरो मत, तुम लोगों की जय हो। यद्यपि मैं ब्राह्मणों के शाप को निरस्त कर सकता हूँ, किंतु मैं ऐसा करूँगा नहीं, प्रत्युत इससे मेरा समर्थन प्राप्त होगा। श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा कि श्लोक नंबर 26 के संबंध में बताया गया है, जितनी भी घटना घटी है उन्हें भगवान का समर्थन प्राप्त था। सामान्यता इसकी संभावना नहीं थी कि चारों मुनि द्वारपालों पर इतना क्रुद्ध होते, ना ही भगवान अपने दो द्वारपालों की उपेक्षा कर सकते थे, ना वैकुंठ में एक बार जन्म लेकर कोई वहां से वापस आ सकता था। इसलिए ये सारी की सारी घटनाएं भौतिक जगत में अपनी लीलाओं के हेतु स्वयं भगवान द्वारा अभी कल्पित थी। इस तरह वे साफ साफ कहते हैं कि यह उनकी सहमति से किया गया, अन्यथा केवल ब्राह्मण शाप के कारण वैकुंठ के वासियों का इस भौतिक जगत में वापस आना संभव असंभव होता। भगवान ने इन तथाकथित दोषियों को विशेष रूप से आशीर्वाद दिया, तुम लोगों की जय हो। भगवान जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं वह भक्त कभी पतित नहीं होता, यही इस घटना का निष्कर्ष है। तो भगवान कहते हैं माँ भेष्टमस्तु क्षमा, आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी जय हो, तुमको डरने की आवश्यकता नहीं। तो ये भगवान के भक्त हैं, भगवान जो भी कार्य करते हैं बस दूसरे सारे जीवों का कल्याण करने के लिए करते हैं, इसलिए भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, सुंदर मनोहारिणी लीलाएं करते हैं ताकि इनको श्रवण करके हमारा जीवन सफल हो सके। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं एतत्पुरैव निर्दिष्टम् रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिता द्वारी विशन्ति मय्युपारते एतत् पुरैव निर्दिष्टम्। एतत् मना यह प्रस्थान, पुरा अर्थात प्राचीन काल में एव निश्चय ही, निर्दिष्टम पहले ही बतलाया गया, रमया लक्ष्मी द्वारा, क्रुद्धया क्रुद्ध यदा जब, पुरा यानी पहले, पुरा अपवारिता यानी रोक की गई, द्वार यानी द्वार पर, विशंति प्रवेश करते हुए, मई उपारते मई मना जब मैं उपारते विश्राम कर रहा था। ब्रह्मा जी कहते हैं वैकुंठ से यह प्रस्थान लक्ष्मी जी ने पहले ही बतलाया दिया था। वे क्रुद्ध थीं क्योंकि जब उन्होंने मेरा धाम छोड़ा और वे फिर लौटी तो तुमने उन्हें द्वार पर रोक लिया जब कि मैं सो रहा था। यहाँ पर भगवान जय और विजय को ये याद करा रहे हैं कि एक बार जब लक्ष्मी जी भगवान के धाम से बाहर अपने भक्तों की सुरक्षा करने के लिए या उनको वरदान देने के लिए गई थी और जब पुनः वो लौटी थी तो भगवान विश्राम कर रहे थे और जय और विजय ने लक्ष्मी महारानी को भी रोक लिया था। अब लक्ष्मी महारानी को जब उन्होंने रोका था उसी समय लक्ष्मी महारानी ने कह दिया था कि तुमने क्योंकि मुझे यहाँ पर रोका है, वो सर पे चढ़ा रखा है ना वैकुंठनाथ ने तुमको, उनकी पत्नी को अंदर जाने से रोक रहे हो, उसी समय से ये निश्चित हो गया था कि आपका पतन होगा, आपको धरती पर जाना पड़ेगा। और लक्ष्मी महारानी ने भगवान से कहा था कि आप इनको दंड दो। तब लक्ष्मी महारानी को भगवान ने कहा अगर मैं अभी इनको दंड दूंगा तो संसार यही कहेगा देखो पत्नी के कहने पर अपने नौकरों को दंड दिया, कभी ना कभी फिर से कुछ ऐसी लीला होगी कि इनको दंड दिया जाएगा। तो उसी कारण लक्ष्मी महारानी ने पहले से ही बोल दिया था, इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं वैकुंठ से यह प्रस्थान लक्ष्मी ने पहले ही बता दिया था। वे क्रुद्ध थी क्योंकि जब उन्होंने मेरा धाम छोड़ा था और फिर लौटी थी तो तुमने उन्हें द्वार पर रोक दिया था जबकि मैं सो रहा था। तो यहाँ तक हमने देखा कि जय और विजय को श्राप मिल गया है और अब वो राक्षस का स्वभाव लेकर संसार में जाएंगे, भगवान के साथ विरोधाभास से वो शत्रुता रखेंगे, परंतु क्योंकि प्रतिक्षण वो भगवान को ही स्मरण करेंगे इसलिए भगवान उनको सायुज्य मुक्ति प्रदान करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ। हेलो।